ओम शांति। कहते हैं एक सूर्य है, एक गगन है, एक है धरती माता। दया करो प्रभु, सब एक बने, एक से सबका नाता। जब सूर्य की किरण धरती पर पड़ती है तो वो ओस की बूंद बन जाती है। और किसी ने ये कहा है कि पैर खाकर, लात खाकर किसी को अन्न देने की क्षमता है तो मातृत्व में है, जिसे हम ममता कहते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि खुद ममता दीदी, जो मंडला सेवा केंद्र की इंचार्ज हैं, 39 सालों से ज्ञान में हैं और 38 साल से समर्पित होकर एक दिशा सूचक यंत्र की भांति हम सबका मार्ग प्रदर्शन कर रही हैं। और मार्ग कोई सा भी हो, यदि कठिनाई ना आए तो वो पुष्प भी अच्छे से पल्लवित नहीं होता। इसीलिए किसी ने ये कहा कि जुबां पर आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए ममता को भी जलना पड़ता है, है ना ये? तो आदरणीय ममता दीदी हम सबकी क्लास कराएंगे। आदरणीय दीदी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो हम सभी उस परम प्यारे मीठे दिलाराम बाप की याद की छत्र छाया में बैठकर शीतलता का, सच्चे प्यार का, आत्मिक शांति और आत्मिक खुशी का अनुभव कर रहे थे। परमात्म प्राप्ति के आधार से, जो परमात्मा से हमने प्राप्ति की है उसका जीवन में एहसास है, जिससे हम अपने खुशनुमा जीवन को बनाते जाते हैं, महसूस करते हैं कि हम उस परमात्मा की याद की शीतल छत्र छाया में ही चल रहे हैं। दुनिया में परछाया है, परवशता है, लेकिन हम छत्र छाया में हैं। आप और हम कितने न खुशनुमा बच्चे हैं, खुश नसीब बच्चे हैं, जो हमने उस परमात्म प्यार के, परमात्म प्यार को, प्राप्ति को अपने जीवन में अनुभव कर सदा के लिए खुशनुमा जीवन बना लिया। परमात्मा से प्राप्त श्रीमत शिक्षाएं प्यार और प्राप्ति के आधार से हम अपने जीवन को खुशनुमा बनाते जाते हैं। और वो खुशी, वो परमात्मा स्नेह के विमान में उड़के ही हम यहां बाबा के घर पहुंचे हैं, है ना? सभी को ये अनुभव, सभी स्नेह के विमान में उड़के ही आए हैं ना। माया तो भिन्न भिन्न प्रकार की आई भी होगी, लेकिन सब विघ्नों को, भिन्न भिन्न बहुरूपी रूप से आई हुई माया को खत्म करके, विजय प्राप्त करके भी हम बाबा के घर उड़ करके पहुंच जाते हैं। तो कितनी अंदर में खुशी हम आत्माओं को होती है, हमारे मस्तक से चमकती हुई वो खुशी, वो स्नेह को बाबा भी देखते हैं। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे, वाह। भगवान हमारी वाह वाह करते हैं। अभी लेटेस्ट 31 दिसंबर की मुरली में भी बाबा ने हमें क्या कहा था, वाह वाह, याद है ना सभी को, बाबा ने वाह वाह शब्द सदा याद रखने की कहा था। वाह वाह शब्द को कभी भूलना नहीं है। वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। तो अमृत वेले बाबा हमें वाह वाह रहने का वरदान देते हैं। और ये जो संगम युग है, ये विजय पाने का मौसम है, क्योंकि हमारे साथ कौन है, हमें मिला कौन है, भगवान, जिसका साथी भगवान है। तो कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। माया का कोई भी तूफान कहो, आंधी कहो, वो हमें बाबा के घर आने के लिए रोक सकी नहीं रोक सकती, क्योंकि हम उसके स्नेह प्यार में उड़कर के यहाँ पहुंचे हैं, विजय प्राप्त करके आए हैं, अमृत वेले बाबा से विजय का तिलक लगवाया है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो विजय पाने की मौसम चल रही है, हम माया से, माया जीत बन, विजयी बन, जगत जीत बनना है हमें, ये हमारे अंदर में दृढ़ता है ना सभी के, दृढ़ता ही जीवन में सफलता को लाती है। तो संगम के समय को भी हमें यूज करना है कि ये समय कौन सा चल रहा है। अगर संगम युग भी हमें याद रहता है तो इसकी बहुत विशेषताएं भी हमें याद रहेंगी। इस संगम समय के अमृत वेले हम बाबा से वरदानों से झोली भरते हैं। बाबा फॉलो फादर करने वाले बच्चों को कितना याद, प्यार, विशेष स्नेह देते हैं, वाह वाह बनने का वरदान देते हैं, और अपने अपने पुरुषार्थ के प्रमाण हम बाबा के बच्चे अमृत वेले बाबा से दुआएं भी प्राप्त करते हैं। तो जिस आत्मा के पास भगवान की दुआएं हो, उसे और क्या चाहिए। दुनिया में भी कहते हैं, बड़ों को, बच्चों को सिखाते हैं, बड़ों की दुआएं लो, आज परीक्षा देने जाना है, आज कहीं विशेष कार्य के लिए जाना है, तो सिखाते हैं ना अपने बच्चों को कि दुआ लेकर जाओ, पांव पड़ो, दुआएं मिलेंगी बड़ों से, उससे आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास किसकी दुआएं हैं, बाबा की, भगवान की दुआएं। तो वो रोज हमें अपने पुरुषार्थ प्रमाण दुआएं देता है और हम दुआएं उससे स्वीकार करते हैं, और दुआएं फिर हमारी आगे हमें बढ़ाती हैं, हमारी आत्मा की उन्नति प्रगति। जितना हम भगवान के पक्के बच्चे बनकर के दुआएं प्राप्त करने लायक बनते हैं, वो दुआएं हमें आगे भी बढ़ाती हैं। दुआएं अंतिम पेपर के समय जो चारों तरफ से समस्या आएगी, अंतिम पेपर आएगा, हाहाकार मचेगी, हलचल होगी, अचानक के हलचल के माहौल होंगे, उस समय हमें कौन बचाएगा। बाबा की दुआएं हमारे लिए कवच बन जाएंगी, दुआएं हमें बचा सकती हैं। तो दुआएं हम भगवान से प्राप्त करने के लिए संगम के समय को, संकल्प को, श्वास को जितना हम सफल करते हैं, उतनी हम दुआएं प्राप्त करते हैं। तो दुआएं प्राप्त करने के लिए, सर्व की और दुआएं लेने के लिए दुआएं देना पड़ती है। जो दुआएं देना जानता है उसे ही दुआएं मिलती हैं। तो जितना हम बड़ी दिल, सच्ची दिल, खुली दिल रखकर के औरों को दुआएं देने वाले बनेंगे उतना ही दुआएं हमें मिलेंगी। तो दुआएं लेने और दुआएं देने की सीजन है संगम युग। जितना हम देंगे उतनी दुआएं मिलेंगी। लेकिन दुआएं दे कौन सकता है, देने लायक भी कौन होगा? तो जितना हमारे अंदर से व्यर्थता, नकारात्मकता, नकारात्मक स्वभाव, संस्कार जब हमारे खत्म होंगे, जब हमारा नजरिया सकारात्मक होगा, हरेक के अंदर हम विशेषताओं को, गुणों को ही देखेंगे, हमारी दृष्टि ही विशेषताओं का दृश्य ही देखने वाली होगी। जितना हम सकारात्मक नजरिया रखेंगे, सकारात्मक व्यक्तित्व वाले होंगे, हर आत्मा की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की बातों को उठाएंगे, तभी तो हम उसे दुआएं दे सकेंगे। नकारात्मक होने के कारण दुआ दे नहीं सकेंगे, और जब दुआ दे नहीं सकेंगे तो हम दुआएं ले भी न सकेंगे। तो दुआएं देने वाले को दुआएं मिलती है। तो इसलिए हमें संपूर्ण सकारात्मक बनना पड़ेगा। तो बाबा की जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, श्रीमत मिलती है, उन सब को हमें अपने जीवन में लाकर के और सकारात्मक हमें अपना व्यक्तित्व बनाना होगा। तो जितना हम सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे, हमारी उन्नति, प्रगति, दुआएं देने और लेने से आगे आगे हम उड़ते रहेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जो यहाँ दुआओं के विमान में उड़ेगा वो ही तो वहां असली विमान में उड़ेगा, है ना? तो संगम पर तो हमें दुआएं देने लेने में आगे रहना है। भगवान तो हम बच्चों के लिए ही आया है, वो खाली बैठा है हमारे लिए। और बाबा कहता कि सारा बोझ भी तुम मुझे दे दो। तो जब हम सारे बोझ बाबा को दे देते हैं तो हम बाबा के बच्चे लाइट हल्के होकर उमंग, उत्साह, खुशी में उड़ने वाले बन जाते हैं। तो ऐसे खुशी में सदा रहने वाली, सकारात्मक होकर चलने वाली आत्मा ही दुआओं का पात्र बनती है। इसलिए बाबा के दुआओं को तो हमें प्राप्त करना ही है, लेकिन सर्व की दुआएं प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा पुरुषार्थ भी करना होगा। आप सभी जानते हैं, हम भगवान की छत्र छाया में ऐसे आ गए हैं, ऐसे निश्चिंत जीवन जी रहे हैं, इतनी खुशी और नशे से ये ब्राह्मण जीवन हम जी रहे हैं, और दुनिया में हम देख रहे हैं कितना चिंतन वाला, चिंता वाला जीवन है मनुष्य आत्माओं का। भले सब साधन वैभव दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी हम बाबा के बच्चों जैसी खुशी क्या उनके जीवन में है? भले सब कुछ है लेकिन खुशी तो नहीं है। और हम बच्चों के पास खुशी का खजाना भरपूर है। हम बल्कि दिल से कहते हैं कि हमारे लिए ये संगम युग खुशी का युग है, मौज मनाने का युग है, भगवान के साथ मिलन मनाने का युग है। हम समर्थ आत्मा बनी, समर्थ बाप के साथ, हम समर्थ आत्मा का समर्थ पिता परमात्मा के साथ मिलन मनाने का ये संगम युग खुशी का युग है। और खुशी हमारी अंदरूनी प्रॉपर्टी है, खजाना है, जो बाबा के बच्चे बनकर हमें प्राप्त हुआ है, ऐसी खुशी जो हम औरों को भी देने के लिए बाबा हमें कहते हैं कि सर्व आत्माओं को भी तुम ये ईश्वरीय संदेश देकर, उन्हें भी अपने आत्मिक पिता का परिचय देकर इस खुशी में शामिल करो जो अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें भी अगर ठिकाना मिल जाए, परमात्मा पिता का वो सच्चा प्यार मिल जाए, तो उनके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। तो हमें ये मालूम है कि हमने एक ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर अपना नाम दर्ज कराकर गॉडली स्टूडेंट लाइफ बनाई है। हम बाबा के पास आए हैं, आकर के हमने ये ईश्वरीय कोर्स उठाया और हम गॉडली स्टूडेंट बने। इस स्टूडेंट लाइफ में आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोर्स को उठाया और इस ज्ञान और आध्यात्मिकता को जितना हम अपने अंदर आत्मसात करते जाते हैं, अपने अंदर उतारते जाते हैं, उतना हम व्यर्थता से, नकारात्मकता से दूर होते जाते हैं। क्योंकि बाबा ने, आप सभी जानते हो, शिवरात्रि के समय हम बच्चों से विशेष बर्थडे की कौन सी गिफ्ट मांगे बताएंगे? कौन सी गिफ्ट मांगी? व्यर्थ को समाप्त करने की। तो हमें व्यर्थ और नेगेटिव, नकारात्मकता को समाप्त करना है। क्योंकि छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प भी जो हैं, वो हमें गिराने, धोखा देने के कभी कभी निमित्त बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थता और नकारात्मकता, इन सब को हमें समाप्त करना है। तो बाबा ने कहा ना, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा को इनाम भी मिलेगा। तो व्यर्थता को समाप्त करना है, ये बाबा ने होमवर्क दिया, ये सौगात मांगी कि व्यर्थता को समाप्त करो। तो देखो हम सभी अभी कहां बैठे हैं? मधुबन बाबा के घर आए हैं और ये मधुबन विशेष कमाई जमा करने का स्थान है। हम ब्राह्मण आत्माओं की सबसे प्रिय चीज हमारी स्थिति है, हमारी अवस्था है, जो हम अपनी जमाने के लिए बाबा के घर मधुबन में, बाबा की छत्र छाया में आते हैं कि बाबा की याद की छत्र छाया में रहकर सारा दिन ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई, क्लासेस करते रहते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, सत के संग में रहते हैं और अपनी कमाई जमा करते हैं। तो हम सारा दिन ये स्मृति में रहें, ये रखें कि हम इस मधुबन कमाई करने के लिए, किस जन्मों की कमाई का ख्याल रख करके हमें इस समय को सफल करना है, कि हम लक्ष्य रखें कि यहां हमारा एक मिनट भी व्यर्थ न जाए, व्यर्थ बातों में भी न जाए। हम बाबा से मिलन मनाने आए हैं और आपस में मिले भी तो मुस्कुराकर, खुशनुमा चेहरे द्वारा ओम शांति के मंत्र से सिर्फ हम मिलन मनाएं। बाकी व्यर्थता की बातों से, इधर उधर की तेरी मेरी बातों से अगर हम लगे रहेंगे तो हम बाबा की छत्र छाया का, शीतलता का, प्यार का, प्राप्ति का, कमाई का, सबका घाटा कर देंगे। क्योंकि ये कमाई का स्थान है। हम यहाँ इतना सब कुछ माया के साथ युद्ध करके, विजय प्राप्त करके, बड़े स्नेह प्यार से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कितने प्रकार के विघ्नों को आप पार करते करते अपनी लगन के आधार से आए हुए विघ्नों को हटाते हुए और बाबा के पास पहुंच करके हम उसकी याद की लगन में मगन होकर के अनुभव अपने मन में संजोते हुए अनुभवों की खान बनने के लिए आए हैं, कमाई करने के लिए आए हैं। तो जैसा लक्ष्य रखकर हम मधुबन में एक एक दिन निकालेंगे वैसा ही हम प्राप्त कर सकेंगे कि हमें एक दिन भी ऐसा न जाए जो रात को हम बाबा को अपना सारे दिन का पोता मिल देने के लिए गुड नाइट करने के लिए बैठें, तो हम भगवान को बाबा को कह सकें, बाबा आज तेरे घर मधुबन में आकर मैंने बाबा इतनी कमाई कर ली, आज इतनी सारी मेरी कमाई हुई, सारा दिन मेरा बड़ा नियम प्रमाण संयम प्रमाण खुशी से भरपूर कमाई जमा करते हुए निकला बाबा, ऐसा निकले। बाबा को गुड नाइट करके पूरे दिन का हम बहुत खुशी खुशी समाचार देकर बाबा की याद की गोदी में सोएं, क्योंकि ये मधुबन कमाई करने के लिए आए हैं, हमें कुछ भी यहाँ पर अपना व्यर्थ नहीं करना है। और शिवरात्रि पर हमने व्यर्थ समाप्त करने की गिफ्ट बाबा को दी है। बाबा ने कहा ना, दे करके वापस नहीं लेना है ना, तो हमें वापस नहीं लेना है। तो ये हम अटेंशन रखें बाबा की इतनी इस सीजन की जो मुरलियों को हम रोज रिवाइज भी यहाँ करते रहें, क्योंकि हमने देखा है जो बाबा के प्यार में डूबे हुए बच्चे बाबा के ही लगन स्नेह प्यार के विमान में उड़ते हुए यहाँ आए हैं, बाबा की इस सीजन की मुरलियों को भी अपनी डायरी में संजोकर या उन मुरलियों को अपने साथ में लेकर यहाँ आए हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस मधुबन में आप उन मुरलियों को रिवाइज करते रहें जो टाइम मिले। यहाँ तो आपको बहुत ज्ञान की शिक्षाएं क्लासेस सब मिल रही हैं, उसका भी रात को मनन करें। जितनी अधिक से अधिक कमाई करने का लक्ष्य रखें और जितना अधिक से अधिक रोज रोज वैरायटी अनुभव करने का लक्ष्य रख करके हम एक एक दिन मधुबन में कमाई करते हुए निकालेंगे तो हमारी आत्मा बहुत खुशी से भरपूर होगी। लगेगा कि हम यहाँ से बहुत खजाना लेकर जा रहे हैं जो आकर जाकर हम अपने सभी ईश्वरीय भाई बहनों को भी बांटेंगे कि हम इतना खजाना लेकर आए हैं, ऐसा जामन अपनी अवस्था को जमाने का लेकर आए हैं जो साल भर तक खत्म नहीं होगा। दही जमाते हैं ना आप सभी, जामन रखते हैं ना, अगर जामन खत्म हो जाए तो दही कैसे जमेगा, और जामन अगर है भी और वो सड़ जाए तो दही कैसे जमेगा, है ना। तो हम बाबा के पास आते हैं अपनी अवस्था को जमाने का जामन लेने, है ना, वो युक्ति लेने, ताकि हम साल भर तक अपनी अवस्था को डगमग ना होने दें, डिस्टर्ब ना होने दें, हलचल में ना आने दें। जीवन में जितनी भी चुनौतियां आए उनको हम सहज रीति से सामना कर सकें। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। समय, संकल्प, श्वास, शक्ति सबको सफल करें। जितना हम सफल करेंगे, व्यर्थता से वेस्ट से बचाएंगे, उतना हमें शक्ति भी मिलेगी, दुआएं भी मिलेंगी। कमाई तो है ही है, इसलिए लक्ष्य के आधार से लक्ष्य बना करके अगर हम चलते हुए पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के घर लक्ष्य बना करके कदम उठाएंगे तो बहुत प्राप्तियां करके जाएंगे। तो सभी यहां से बहुत कमाई इकट्ठी करके जाएंगे ना, कमाई की गठरी बांध कर ले जाना और जाकर अपने सभी भाई बहनों को भी बांटना है। तो देखो बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, हमें क्या बनाना चाहते, क्या बनाने आए हैं, मानव से देव। कभी सोचा था हा? सोचा था कभी? हम तो सोचते थे हमें तो मंदिर में जाकर देवताओं की गुणगान करना है, आप सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, गुणों की महिमा करते थे और खुद को क्या कहते थे, कभी तो सोचे भी नहीं थे कि हम इनके समान बन सकते हैं, है ना। और बाबा ने आकर क्या कहा, बच्चे मैं आया हूं तुम्हें मानव से देव बनाने, तो देवी देवता बनने आए हैं हम। कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया है, मनुष्य से देवता बनने का। तो बाबा हमें देवी देवता बनाने के लिए क्या करते हैं, रोज रोज परम धाम से आकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें देही अभिमानी बनाते, आत्मा का पाठ पक्का कराते। देही अभिमानी स्थिति से हम देही के पिता, आत्मिक पिता के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं, सर्व प्राप्ति करते हैं। ये युक्ति अपनाकर बाबा हमें ये पढ़ाई पढ़ाते, इस पढ़ाई का कोर्स भी उठाते हैं और हम गॉडली स्टूडेंट बनते, ब्रह्मा के धर्म के बच्चे ब्राह्मण कहलाते। और ब्राह्मण बनकर जो रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, मनन करते हैं, बाबा की मुरली में ही जादू खुदाई का कहते हैं ना, जो इतने समय से सुनते आए हैं मुरली का गुणगान, जो कहते हैं गोप गोपियों से पूछो, मुरली की धुन सुनते ही क्या होता है, गोप गोपियां सुदबुद्ध खो जाते थे, तो वो ये ज्ञान की मुरली है जो हम सच्चे बाबा के, गोपी वल्लभ बाप के गोप गोपी बनते हैं, उनकी प्यारी मुरली सुन करके अपने जीवन को ऐसा दिव्य श्रेष्ठ बनाते हैं जो मानव से हम देवी देवता कहलाएंगे। तो देवी देवता बनाने के लिए पहले बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं, हम ब्राह्मण लाइफ में आते हैं, हमें ब्राह्मण बना करके हम ब्राह्मणों से ही यज्ञ रचा है, है ना, हम ब्राह्मण यज्ञ रचने वाले बने, रचता बने, ब्राह्मण बना के ही तो ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया बाबा ने, ब्राह्मण बन के यज्ञ रक्षक भी बने। तो श्री बाबा आकर के हमारा शिक्षक बना, रक्षक बना। जब हम बाबा को साथ लेकर और शिक्षक और रक्षक बाप के साथ कंबाइंड रहना शुरू करते हैं, कंबाइंड स्वरूप को याद रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्यर्थता, नेगेटिव, ये सब नकारात्मकता अपने आप खत्म होती जाती है और हमारा जीवन सकारात्मक बनता जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान जो रोज रोज हम बाबा से पढ़ाई में पढ़ते हैं। तो कोर्स भी उठाया, रिवाइज कोर्स भी किया, फिर रियलाइजेशन भी होने लगा ना, अनुभूति हुई ना कि इस ज्ञान में हमारे अनुभव बढ़ते गए, तो अनुभवी भी बने, तो यज्ञ रक्षक बनकर के, ब्राह्मण बनकर के हम इस पुरुषार्थ में स्टूडेंट बनकर के आगे आगे बढ़ते चले। फिर बढ़ते बढ़ते हमें और आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अपना विकास करना है, आगे बढ़ना है, ये हम अपने अंदर लक्ष्य बनाने लगे। तो जैसा जैसा लक्ष्य बनाते हैं वैसे वैसे लक्षण भी हमारे अंदर आते जाते हैं। कहते हैं जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, तो सोच को भी हमने अपना सकारात्मक बनाया ना, पॉजिटिव बनाया, जैसा सोच रखा वैसा हम बनते जा रहे हैं। तो सोच बाबा ने हमारी बदल दी, इतना ऊंचा स्वच्छ साफ दिल वाला हमें बनाया, तो सच्चाई, सफाई और सादगी, ये है ब्राह्मण जीवन। तो सच्चाई के आधार से, सत्यता के आधार से ही हम सतयुग में जाने लायक बनते। सत्यता, सच्चाई हमें ताकतवान बनाती, जिस ताकत के आधार से हम माया पर विजयी बन जाते हैं। माया हम पर वार नहीं कर सकती, हम सफलता जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो सत्यता जिससे ताकत आती है, सफाई हमारी अंदर और बाहर, सफाई शोभा है, प्रत्यक्षता है, प्रत्यक्ष दिखने वाली है, और सादगी माना एकानामी जीवन। एकानामी को अपनाने वाले हम ब्राह्मण हैं। एकानामी माना बचत करके, कुछ भी हमारा व्यर्थ न जाए, वेस्ट न जाए। हम अपने संकल्पों की एकानामी करते हैं कि हम संकल्पों को वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी कौन सा समय चल रहा है। सुनते थे ना कि वृक्ष के नीचे से जो संकल्प करो वो पूरे हो जाते थे, पर पता नहीं था वो कौन सा पेड़, कौन सा वृक्ष। तो अभी इस कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, जो संकल्प करेंगे वो हमारे पूरे होंगे। तो क्यों ना हम अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प करें, ऊंचे संकल्प करें, जिसको बाबा अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों को जरूर पूरा करते हैं। तो संकल्प हमारे, जो हम संकल्प करें उसको हम पूर्ण करें। तो श्रेष्ठ संकल्प, ऊंचे संकल्प करें, बाबा हमारे जरूर पूरे करें। आपने खुद अनुभव किया होगा कि हम मधुबन आए, मधुबन आने के पहले से ही आपने बहुत संकल्पों को श्रेष्ठ बनाया होगा। बाबा तू मुझे बुलाना, मुझे तेरे घर आना है, बाबा तेरे से मिलन मनाने आना है, सभी ने अंदर किया ना संकल्प। तो कईयों के ऐसे विचित्र विचित्र अनुभव होंगे, कैसे बाबा ने उनका रास्ता आगे किया, कैसे उनको यहाँ बाबा आने के लिए हेल्प किया। किसी के पास कुछ दिक्कत आई, किसी के पास कुछ आई, पर बाबा ने कैसे उसको समस्या को हटाकर रास्ता दिया और बाबा के घर पहुंच गए। तो कैसे पहुंचे, संकल्पों को के अंदर दृढ़ता लाई, तब सफलता प्राप्त करके आज बाबा से मिलन मनाने पहुंच गए। तो संकल्पों की बचत करनी है हमें, ऐसे वैसे खराब संकल्पों को खत्म करके श्रेष्ठ संकल्पों को हमें अपने अंदर दृढ़ करना है। तो संकल्पों की एकानामी, कुछ भी हमारे वेस्ट थॉट्स न रहें, व्यर्थ संकल्प न रहें, न हमारा समय वेस्ट जाए, न संकल्प वेस्ट जाए, न समय, सबकी एकानामी बाबा ने हमें करना सिखाई है। तो इसलिए सत्यता, सफाई, सादगी, ये है ब्राह्मण जीवन। अब ब्राह्मण जीवन में हम पहले शूद्र से ब्राह्मण कुल में आए। लौकिक कुल में भी देखो कुल की मर्यादाएं होती हैं। जो परिवार वाले कहते हैं अपने बच्चों से हमारे कुल का नाम रोशन करना, हमारे कुल की ये मर्यादाएं हैं, तो लौकिक कुल में भी मर्यादाएं होती हैं, नियम होते हैं, संयम होते हैं। ऐसे ही हमारे ब्राह्मण कुल की भी नियम मर्यादाएं हैं। तो हम इस ब्राह्मण कुल में आए हैं, तो इस ब्राह्मण कुल के भी हमें पूरे नियम संयम मर्यादाओं को पालन करना है। तो शूद्र कुल से निकलकर हम ब्राह्मण कुल में आए, और हम ये ब्राह्मण बनकर, बाबा के बच्चे बनकर, गॉडली स्टूडेंट बनकर, हमने इस ईश्वरीय ज्ञान में चलना शुरू किया। पहले ज्ञान में चले, फिर ज्ञान हमारे अंदर में चला। पहले ज्ञानी बने, फिर ज्ञान को आत्मसात करके ज्ञान स्वरूप बने। हमने अपने अंदर आत्मसात किया, ज्ञान का स्वरूप बने, है ना? तो वो ब्राह्मण बनकर फिर हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे आगे बढ़ते चले। फिर हम अपने आप की चेकिंग करना भी शुरू करते हैं। कि हम बाबा के बच्चे बनकर चल रहे हैं, तो राज्य पद और प्रजा पद, अब इसमें कौन से संस्कार मेरे अंदर कितने आ गए हैं, ये भी हमें चेकिंग करनी है। क्योंकि जो बाबा के बच्चे बनते उनका फिर और ये भी संकल्प रहता है कि हम वहां जाकर के भी कौन सा पद पाएंगे। बाबा चाहता है मेरे हर बच्चे राजा बच्चे बने, है ना, ऊंच पद पाए, तो हमारा भी तो लक्ष्य रहता है ना कि हम भी कौन से पद पाए, हमें प्रजा पद पाना है या राजा पद पाना है। तो राज्य पद के कौन से संस्कार हैं, कौन से संस्कार हमारे अंदर आए हैं, कितनी समर्पणता आई है, ये सब खुद की खुद चेकिंग करनी है। तो अब राज्य पद श्रेष्ठ पद के संस्कार कौन से हैं वो हमें मालूम होना चाहिए, है ना, तो चेकिंग कर सकेंगे। तो हमारे वो राज्य पद के संस्कार, तो बाबा के बच्चे बने तो अधिकारी बने, है ना, पहले हम भक्त थे उसको याद करते थे भगवान को, फिर बच्चे बने तो अधिकारी की स्टेज आ गई, अधिकारी बन गए, है ना। तो हमें माया की अधीनता से अपने को दूर करना पड़ेगा, अधीनता सारी समाप्त, अधीन होना ये राज्य पद के संस्कार नहीं है, हमें माया के अधीन नहीं होना है। कोई भी प्रकार की समस्या विघन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर हम कहते हैं क्या करें, ये समस्या आ गई, ये परेशानी आ गई, माना समस्या आ तो गई, चाहे छोटी थी चाहे बड़ी थी, लेकिन अगर आपने समस्या 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 आ गई क्या करें कहा, तो समस्या के साथ तो आप भी समस्या ही बन गए, समस्या स्वरूप हो गए, अधीन आत्मा हो गए उसके, तो समाधान कौन करेगा। समस्या समस्या कहकर हमें उसके साथ समस्या स्वरूप थोड़ी बनना है। आज भी क्लास में भी हम कभी कभी मिस कर देते हैं, अभी आज क्लास में क्यों नहीं आए, बहनें पूछती हैं, तो कहते हैं क्या करें बहन जी, परेशानी आ गई थी, ये समस्या आ गई थी। तो बहन जी का क्या नुकसान होगा, नुकसान तो हमारा होगा। अगर हम समस्या में भी बाबा की क्लास में आते तो बाबा हमें उसी मुरली के अंदर हो सकता है उस समस्या का हल दे देता। आप सबने अनुभव भी किया होगा कि कोई बात आप पूछना चाहते हैं, परेशान हैं, उस दिन आपने मुरली बाबा की क्लास की, आपको समस्या का हल मिल गया, आप वापिस शान में स्थित हो गए, आपकी परेशानियां समाप्त हो गई, समस्याओं के हल मिल गए, है ना। तो अधीन नहीं रहे, अधीनता के संस्कार खत्म करके अधिकारी की स्टेज, बच्चा माना अधिकार, तो अधिकारी बने, सत्कारी बने। और बाबा ने हमें पहला आत्मिक स्थिति निराकारी स्थिति बताई, उस निराकारी स्थिति बनाते हुए निरअहंकारी की स्टेज को हमें लाना है, तो अधिकारी सत्कारी निराकारी और निरअहंकारी के संस्कार जितना अपने अंदर बढ़ते जाएंगे, तो ये चार बातें, अधिकारी सत्कारी निराकारी और निरअहंकारी, और निर्विकारी तो है ही है, ब्राह्मण माना निर्विकारी तो है ही है, ये सब राज्य पद के संस्कार है जो हमारे अंदर हमें चेक करने हैं। और अगर नहीं तो फिर प्रजापद के संस्कार आ जाएंगे, तो हमें अधीन थोड़ी बनना है, हमें तो राजा महाराजा बनना है। तो स्वयं के अपनी प्रजा को, अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को हम जितना अपने अधीन रखेंगे, अपने अनुसार कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से अपनी आज्ञा प्रमाण चलाएंगे, तब तो वो संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होंगे। नहीं तो फिर हम क्या कहते हैं, हम चाहते तो हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। तो सकारात्मक व्यक्तित्व माना क्या, हम जो चाहें और जो हमें करना चाहिए वो ही हम करें, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमें नहीं करना है, ये है सकारात्मक। पर जो हमें करना चाहिए वो अगर हम नहीं करते और जो हमें नहीं करना चाहिए वो कर लेते तो वो तो नकारात्मकता हो गई है? तो वो हमें छोड़ना है। तो ये हमें ब्राह्मण बन के भी अपने आगे पद को प्राप्त करने के लिए अपने संस्कारों को चेक करना है। तो पहले हम ब्राह्मण कुल में आए, सबसे ऊंच कुल है ब्राह्मण कुल, क्योंकि हम ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण है। और यही ब्राह्मण कुल फिर ब्राह्मण से क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता सो देवी कुल में आएंगे, देवी देवता बनेंगे। तो पहले हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ये डिग्री लेनी है, तब हम देवी देवता बनकर देवी कुल में आ सकेंगे। तो फरिश्ता माना क्या? जितना हम निराकारी स्थिति में डीप में जाएंगे, गहराई में जाकर अनुभव करेंगे, वो फरिश्तेपन का अनुभव होगा। फरिश्ता माना जिसका एक बाप से सर्व रिश्ता हो और कोई भी रिश्तों में फंसने वाला नहीं, देह देह के संबंधियों से न्यारा, एक बाप के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाला। फरिश्ता अर्थात जो फालतू की व्यर्थ बातों को समाप्त करता हो, जिससे कि कोई रिश्ता ना हो, फालतू व्यर्थ की बातों से जिसका रिश्ता नहीं वो है फरिश्ता। जिसका एक बाप से रिश्ता और कोई से रिश्ता नहीं वो है फरिश्ता। जो वक्त पर सबको सहयोग दे सके वो है फरिश्ता। ब्रह्मा बाप ने अपना फरिश्ता बन के यज्ञ को चलाया है, ब्रह्मा बाप चलते फिरते फरिश्ता सबको अनुभव होता था, लेकिन आज तो भले हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा लेकिन हमारी दादियां तो हमारे सामने हैं। आप सभी अनुभव करते हैं ना कि बाप समान हमारी सभी दादियां कैसे हमें चलते फिरते फरिश्तेपन का अनुभव कराती हैं। तो फरिश्ता हमें भी बनना है, बाप समान फरिश्ता हमें बनना है, फिर हम फरिश्ता सो देवता बन सकेंगे। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ते का भी सबको साक्षात्कार ब्रह्मा बाप से होता था, फिर लोग ढूंढने निकलते थे कि वो फरिश्ता हमने देखा तो था वो कहाँ चला गया, तो वो फरिश्तेपन का अनुभव होता था। तो ब्राह्मण कुल से फिर फरिश्ता सो देवता हम बनते हैं। तो देवी कुल की स्थापना बाबा को करने के लिए, देवी देवता बनाने के लिए या देवी कुल की स्थापना करने के लिए बाबा आते हैं, ये बाबा का कर्तव्य बाबा आकर करते हैं, हम बच्चों को देवी कुल वाला बनाते हैं। फिर दूसरा कर्तव्य बाबा देवी राजधानी बना रहे हैं, तो उस देवी राजधानी में जाने के लिए भी हमारा इतना ऊंच पुरुषार्थ होगा, तभी हम उस राजधानी में जाकर ऊंच पद की प्राप्ति कर सकेंगे। अभी सीजन की वाणी में बाबा ने हमें कहा ना, कैसे हमें निर्विघ्न स्थिति बनानी है, विघ्न विनाशक बनना है। बाबा ने हमें कहा, एक मास के लिए होमवर्क दिया बाबा ने ना, निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए, विघ्न आने के पहले ही हम निर्विघ्न अवस्था को अपना लें, वो स्थिति हमें बनानी है। तो जितना हम निर्विघ्न बनने के लिए और ऊंच पद पाने के लिए लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी देवी राजधानी में जा सकेंगे। तो देवी राजधानी के संविधान, नियम, संयम, मर्यादाएं, उन सब का पालन करना पड़ेगा। राजधानी बन रही है ना, देवी राजधानी, देवी राज्य स्थापन हो रहा है ना, तो वहां का संविधान क्या होगा, नियम संयम कानून मर्यादाएं, उन सब का हमें ठीक रीति से पालन करना होगा। तो जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उसकी बताई हुई मुरली के द्वारा जो शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, उन शिक्षाओं को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे, पूर्ण रीति से मर्यादाओं पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, तब तो उस देवी राज्य में जा सकेंगे। तो देवी राजधानी में, देवी राज्य में जाने के लायक अपने आप को बनाना है तो सर्व मर्यादाओं का पालन करते हुए इस ब्राह्मण जीवन में रहना है। नहीं तो मालूम है ना, मर्यादा की लकीर के बाहर निकलने से क्या हुआ, रावण ले गया। तो हम सब कौन है, आत्मा रूपी एक ही सीता थोड़ी थी, हम सब कौन है, आत्मा रूपी हम सभी सीताएं हैं और निराकार राम है जिसने हमें मर्यादाओं की लकीर में रहने के लिए मर्यादा की लकीर दी है। उस मर्यादाओं के नियम मर्यादाओं की लकीर के बाहर हमें नहीं आना है। जितना हम नियम मर्यादाओं के अंदर रहेंगे तो रावण भाग जाएगा ना, माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि संगम युग पर खींचतान का खेल चल रहा है। माया अपनी तरफ खींच रही है और बाबा अपने बच्चों को अपना प्यार लुटा रहे हैं। तो जितना हम बाबा के पक्के बच्चे होंगे, नियम मर्यादाओं की लकीर पर, श्रीमत की पटरी पर अपने ये ब्राह्मण जीवन की गाड़ी को चलाएंगे, उतना सेफ रहेंगे। मर्यादाओं में रह करके ही हम उस देवी राजधानी में जाने लायक बनेंगे। साथ ही तीसरा कर्तव्य बाबा का, देवी धर्म की स्थापना। सतयुग के अंदर, देवी दुनिया के अंदर हम सभी का एक ही तो धर्म होगा। अभी देह के कितने सारे धर्म हो गए हैं, भाषाएं भी कितनी हैं तो धर्म भी कितने हैं। वहां तो एक ही देवी देवता धर्म होगा। सबसे पुराना, शुरू का आदि सनातन देवी देवता धर्म, उस देवी धर्म की स्थापना ये भी कर्तव्य बाबा का है। अनेक सब धर्म विनाश, अभी कितने सारे धर्म हैं, सब धर्म विनाश होकर एक देवी धर्म रह जाएगा। तो धर्म माना, धर्म का अर्थ है धारणा। तो हम अपने जीवन में जितना देवी गुणों की धारणा, ज्ञान की धारणा, पवित्रता की धारणा, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता मुख्य आधार है। तो पवित्रता भी बाबा ने हमें कितनी ऊंची सिखाई है। पवित्रता माना क्या, संकल्प स्वप्न तक की पवित्रता, पवित्रता की गहराई बाबा ने हमें कितनी सिखाई है। क्योंकि हम आत्माएं इस दुनिया में आई थी तब भी बहुत बहुत शुद्ध थी, पवित्र थी, शांत थी, तो जाएंगे तो भी कैसे, शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप होकर आत्मा चली जाएगी। उसके जाने से चाहे कितनी भी आत्माएं अशांत हो जाएं, रोएं, लेकिन वो तो गहरी नींद में शांत होकर चली जाएगी। तो हमें शांति, पवित्रता के आधार से उस देवी धर्म तक पहुंचना है। तो बाबा उस देवी धर्म की स्थापना के लिए, उस धर्म में हमें पहुंचाने के लिए पवित्रता जो उसका आधार है, उसकी गहराई में ले जाते हैं। और जितना जितना हम आत्माएं शुद्धता, पवित्रता को गहराई से पालन करती हैं, उतना ही पवित्रता के सागर अपने आत्मिक परमपिता परमात्मा का प्यार प्राप्त करने की पात्र बनती जाती है। प्यार का पात्र तो बनना पड़ता है, तभी तो प्यार मिलेगा। प्यार का सागर आया है प्यार लुटाने के लिए, पर पात्र तो बनना पड़ेगा। जितना याद करेंगे याद से याद मिलेगी, जितना हम परमात्मा प्रभु प्यारे पिता को प्यार से याद करेंगे तो उतना ही हम प्यार पाएंगे। तो पवित्रता के आधार से जितना हम गहराई से निश्चय और नशे से इस ब्राह्मण जीवन को पवित्रता के आधार से आगे आगे बढ़ाते जाते हैं, उतना ही हमारे जीवन के अंदर ऐसी पवित्रता आती है कि हर अंग हमारा शीतल और शांत हो जाता है। हम सभी को उदाहरण देते हैं ना, कमल फूल का, कमल का फूल का उदाहरण सभी देते हो ना कि कमल का फूल कैसे गंदी कीचड़ में रहता है, कितना बड़ा उसका परिवार है, उसमें रहते हुए भी वो कैसा न्यारा और प्यारा रहता, कीचड़ का छींटा भी नहीं लगता। सुनाते हो ना सभी को ज्ञान में। तो हमें अपने आप को भी सुनाना है। जैसे एक स्लोगन सभी को क्या सुनाते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन हमें अपने आप को भी सिखाना है, रोज सुनाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कौन सा स्लोगन, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसा कर्म और करेंगे उन्हें देखकर हम करेंगे, ये नहीं। बाबा ने हमें क्या कहा है, किसे देखना है, फॉलो ब्रह्मा बाप, मदर फादर को देखना है, मदर फादर को फॉलो करना है, दादियों को देखकर फॉलो करना है। कैसी हमारी बाप समान हमारी दादियां हैं, जो हमें बाप ब्रह्मा बाप समान वो प्यार लुटा रही हैं, देखते हैं ना हम सभी, तो उनको हमें फॉलो करना है। तो ब्रह्मा के हम बच्चे बने, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी बने, ब्रह्मा बाप समान आचरण करने वाले बने, तो वो आचरण वो चरित्र वो मर्यादाएं वो गुण वो शक्तियां वो हमें अपने जीवन में उतारनी है। तो जितना जितना हम बाप के गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे, बाबा से प्यार प्राप्त करके शक्तियों को उससे करंट को अपने अंदर उतारेंगे और उससे प्राप्त सीखी हुई श्रीमत मर्यादाओं के आधार से चलेंगे, शिक्षाएं जो बाबा हमें देकर श्रृंगार रहा है उससे सदैव श्रृंगारी मूर्त होकर रहेंगे, अच्छे देवी गुणों को अपने अंदर दिव्यता के आधार से भरेंगे, तभी तो प्रभु प्यार के पात्र बनेंगे। सयाने बच्चे सपूत बच्चे ही तो प्यार के पात्र बनते हैं, इसलिए कहते हैं ना सपूत और कपूत। तो हम कौन है बाबा के, सयाने और सपूत बच्चे, बाबा के आज्ञाकारी, बाबा के हर फरमान को अपने जीवन में लाने वाले। क्योंकि जितना हम फरमान बाबा के अपने जीवन में लाकर चलते हैं उतनी फरियादें अपने आप खत्म होती जाती है। नहीं तो कई बाबा के बच्चे बन करके भी फरियाद करते रहते हैं बाबा के सामने। फरियाद नहीं करनी है, उसकी फाइलें खत्म करनी है, नहीं तो फाइन लगेंगे। हमें तो रिफाइन होना है ना, फाइन थोड़ी ना देना है। रिफाइन होकर बाबा के साथ 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 सजनी बनकर जाना है कि बराती बनकर जाना है, सजनी बनकर जाना है। तो हम आत्माएं सीताएं हैं, हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की सच्ची सच्ची सजनियां हैं, जो उसके ज्ञान से उसकी शिक्षाओं से अपने को देवी गुणों से सुंदर श्रृंगारी मूर्त बनाकर उसकी सजनी बनकर उसके साथ साथ जाएंगे। पक्का है ना, सब ऐसे ही जाएंगे ना, तो धर्मराज भी डरेगा हमसे। तो हमें अपने को जो चार सब्जेक्ट मिले हैं उन चारों सब्जेक्ट में पास वीरानर होना है। और फिर सजनी बनकर बाबा के साथ साथ जाना है, ठीक है ना। तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर हमने लक्ष्य नहीं बनाया, अपने अंदर दृढ़ता नहीं लाई और फिर दृढ़ता रखकर कदम नहीं उठाया तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं ना, बाबा सिर्फ सुनना थोड़ी है, भक्ति मार्ग में हमने बहुत कथाएं सुनी है, कथा कहानी किस्से, भागवत क्या क्या सुनी है, सुनते ही सुनते तो आए हैं पर बन नहीं पाए, है ना। और अब क्या करना है, सुनना है, सुनकर अंदर समाना है, समाकर स्वरूप दिखाना है और बनकर बाबा के साथ जाना है, ठीक है ना। तो धर्मराज की सजाएं हमें नहीं खानी, कोई फाइन नहीं देना है, उसको भी नमस्कार करना पड़ेगा हमसे। हम भगवान के बच्चे हैं, जिसका साथी भगवान है, जो भगवान के साथ सारा समय रहता है, उसकी ही छत्र छाया में पल रहा है, उसके ही प्यार में पल रहा है, उसके ही हाथ में हाथ देकर चल रहा है, उसे किस बात का डर है, उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए हम बाबा के कितने खुशनुमा बच्चे हैं, इसलिए भगवान भी हमें कहता है, वाह मेरे खुशनुमा बच्चे वाह, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह, वाह वाह का शब्द बाबा ने कहा कभी भूलना नहीं है। वाह 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 कहते क्या होगा, वाह वाह बन जाएंगे और हाय हाय जीवन की सब खत्म हो जाएगी। तो हाय हाय नहीं करनी है, वाह वाह करनी है। तो वाह वाह करते करते बाबा हमें वाह वाह बनाने के लिए आया है। देवी देवता है कौन है, वाह वाह है ना। तो हम बाबा के बच्चे भी ऐसे वाह वाह बनेंगे, तो वाह वाह बोलते बोलते वाह वाह बन जाएंगे। बाबा देखो आते ही हमें क्या बोलते हैं, मुरली में मीठे बच्चे, कभी कभी पहले भी बोल देते मीठे बच्चे और फिर पूरी मुरली होने के बाद भी क्या कहते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, डबल भी मीठे मीठे कह देते हैं, आएंगे तो भी मीठे मीठे और मुरली पूरी होने के बाद भी याद प्यार देंगे तो मीठे मीठे, भले हम कितने ही कड़वे हों, लेकिन बाबा मीठे 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 कहते कहते हमें भी मीठा बना देता है, क्योंकि बाबा खुद सेक्रीन है, खुद मीठा है। तो मीठा ही बनाएगा ना, अपने समान ही बनाएगा ना। तो इसलिए बाबा जैसा हमें बनाना चाहता है, बाबा की जो हम बच्चों से आश है, जो चाहना है, वो हम बाबा की पूरी करें, है ना। होमवर्क देता है ना बाबा हमें, एक मास निर्विघ्न रहना है, व्यर्थता को समाप्त करने का मुझे गिफ्ट देना है। कैसी गिफ्ट बाबा हमें मांगता है, तो वो आश बाबा की हमें पूरी करना है, होमवर्क पूरा करना है, बाप समान बनना है। तो इन सब को करने के लिए जितना हम शान में रहेंगे, जितना हम ईश्वरीय नशे में रहेंगे, आज देखो दुनिया में कोई ऐसे बड़े बड़े कार्य करने के लिए या कठिन तपस्या वाले कार्य करने के लिए लोग नशा कर लेते हैं, पहले कहते ना ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन कार्य है, बहुत मेहनती है, तो हम पहले नशा कर लें, उसके बाद फिर वो कार्य कर पाते हैं। तो ऐसे हम भी ईश्वरीय नशा चढ़ा करके और फिर कार्य करते हैं तो सब सहज हो जाता है। तो सब नशों में नुकसान है, लेकिन ईश्वरीय नशे में फायदा है। तो सदैव बाबा के ईश्वरीय रस को पीते हुए ईश्वरीय नशे में चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जिस तरह दीदी ने ये बताया कि बाबा ने हमसे एक गिफ्ट मांगी व्यर्थ से मुक्ति, और वो तभी हो सकती है जब हम सकारात्मक सोचें। और हमारी बड़ी दादी हमेशा ये कहती थी, इतना बड़ा यज्ञ है, 90% सब अच्छा है, यदि 10% कुछ व्यर्थ दिखाई देता है तो परसेंटेज कौन सा ज्यादा है, 90 ना। तो कहते हैं सलाखों में से किन्हीं दो ने देखा, एक ने कीचड़ में कमल देखा तो एक ने चांद में दाग देखा। अब हमारी नजर देखते हैं कि क्या देखती है। ये क्लासेस हमारी आंखों में परखने का वो जौहर भरते हैं कि हम केवल हीरों को देखें, पत्थर कोई भी नहीं, क्योंकि बाबा का एक एक बच्चा डायमंड है। ओम शांति।